एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, आज का विषय है भारतीय दर्शन,
और इस सफर में हमारी गाइड कह सकते होंगी प्रोफेसर सू हैमिल्टन
जी। उनकी दो खास किताबें हैं, इंडियन फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
ये किताबें ना इस बड़े विषय को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं।
हाँ, क्योंकि अक्सर फिलॉसफी या दर्शन सुनते ही लगता है कि अरे ये तो बहुत भारी भरकम बातें होंगी।
सही कहा, जिनका शायद रोज की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है।
पर हैमिल्टन यही चीज बदलती हैं। वो कहती हैं कि भारतीय दर्शन सिर्फ किताबी बातें नहीं है।
बिल्कुल, हैमिल्टन दिखाती है कि ये जो हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं वो असल में जिंदगी के सबसे जरूरी सवालों से जूझ रही थीं।
जैसे कि
जैसे हम कौन है, ये दुनिया क्या चीज है, हम दुखी क्यों होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है।
अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना विचारना नहीं था बल्कि एक तरह का हल ढूंढना था।
हाँ बिल्कुल, एक तरह का इलाज खोजने की कोशिश।
और यहीं पे मुझे लगता है हैमिल्टन वो आम धारणा तोड़ती हैं जो पश्चिम में है।
कौन सी धारणा?
कि भाई भारतीय दर्शन तो बस रहस्यमय है या सिर्फ आध्यात्मिक है।
हाँ ये बहुत सुना है।
वो इसकी लॉजिकल गहराई और इसकी मतलब जबरदस्त व्यवहारिकता को सामने लाती हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है।
सही बात है, ये आज भी हमारे काम आ सकता है। तो क्या कहते हैं, शुरू करें ये सफर?
बिल्कुल चलिए।
तो सबसे पहले ये सू हैमिल्टन है कौन, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं।
जरूर। प्रोफेसर सू हैमिल्टन जो हैं वो लंदन के किंग्स कॉलेज में भारतीय दर्शन और धर्मों की एक बहुत ही जानी मानी विद्वान हैं, स्कॉलर हैं।
अच्छा।
उन्होंने संस्कृत और इंडियन स्टडीज में पीएचडी किया है, और करीब आप मानिए 30 साल से भी ज्यादा हो गए उन्हें।
ओह।
दक्षिण एशिया की इन जटिल दार्शनिक परंपराओं को पश्चिमी पाठकों के लिए आसान बनाने का काम करते हुए।
अच्छा, तो मतलब एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की।
बिल्कुल। और उनकी खासियत क्या है?
हाँ बताइए।
उनकी सबसे बड़ी खूबी है मेरे हिसाब से अकादमिक गहराई और आम पाठक के लिए सरलता का गजब का संतुलन।
मतलब वो मुश्किल बातें भी आसानी से समझा देती हैं।
हाँ, वो सीधे मूल संस्कृत और पाली टेक्स्ट पढ़ सकती हैं, तो वो विचारों को जड़ से समझती हैं।
अच्छा, ये तो बड़ी बात है।
और फिर उन गहरे विचारों को बहुत ही साफ, सीधी और दिलचस्प भाषा में पेश करती हैं, बिना ज्यादा भारी शब्दों के।
ये कमाल का हुनर है। और उनका नजरिया कुछ अलग है क्या उसमें?
हाँ, उनका एक और अनोखा पहलू है उनका अप्रोच, जिसे फिनोमेनोलॉजिकल या अनुभव आधारित कह सकते हैं।
फिनोमेनोलॉजिकल, थोड़ा समझाइए इसे।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताती कि फलां दर्शन ये कहता है, ढिमका दर्शन वो कहता है।
नहीं,
तो फिर वो इस बात पर जोर देती हैं कि इन विचारों की जड़ें कहाँ हैं। वो है हमारे अपने अनुभव में, हमारी चेतना के विश्लेषण में।
अच्छा।
वो ये पूछती हैं कि दुनिया को किस तरह महसूस करने से ये विचारक ऐसे नतीजों पर पहुंचे होंगे।
बिल्कुल सही।
और यही चीज उनके काम को खास बनाती है। वो भारतीय दर्शन को सूखे नियमों की लिस्ट की तरह नहीं देखती। उनके लिए ये एक जीती जागती इंसानी कोशिश है अपने अस्तित्व की पहेली को सुलझाने की।
और वो कहती हैं कि हमें पश्चिमी चश्मे उतारने होंगे इसे समझने के लिए।
हाँ बिल्कुल, उसे उसकी अपनी शर्तों पर समझना होगा। और वो मुख्य शर्त क्या है?
क्या है
वो? है दुख से मुक्ति की तलाश, मोक्ष या निर्वाण। ये लगभग सभी परंपराओं का केंद्रीय लक्ष्य का।
अच्छा, तो अगर संक्षेप में कहना हो तो हैमिल्टन की किताबें क्या करती हैं?
देखिए, संक्षेप में कहें तो सू हैमिल्टन की किताबें भारतीय दर्शन का एक बहुत ही सुलभ, आसान और व्यापक परिचय देती हैं। और उनका मुख्य तर्क ये है कि इसकी जो विविधता है, इतने सारे स्कूल हैं, उन्हें समझने के लिए हमें बाहरी खांचों से हटना होगा।
जैसे कि पश्चिमी फिलॉसफी के खांचे।
हाँ, और शुरुआत करनी होगी उसके मूल आधार से।
और वो मूल आधार क्या है?
वो है इंसानी अनुभव का विश्लेषण, हमारी अपनी चेतना का विश्लेषण।
अच्छा, और उनका एक केंद्रीय विचार भी है आपने कहा था।
हाँ, जो बार बार सामने आता है वो ये कि भारतीय दर्शन मुख्य रूप से सोटीरियोलॉजिकल है।
सोटीरियोलॉजिकल, ये थोड़ा भारी शब्द है।
हाँ लगता है, पर मतलब सीधा सा है। इसका असली और व्यावहारिक लक्ष्य है संसार से मुक्ति पाना।
संसार यानी जन्म मृत्यु का चक्र।
हाँ, उस दुख भरे चक्र से आजादी, मोक्ष या निर्वाण। तो ये सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है,
बल्कि ज्ञान के जरिए कुछ पाना है।
हाँ, ज्ञान के जरिए बदलाव लाना है, मुक्ति पानी है।
तो फिर ये किताबें उस बड़े सवाल का जवाब कैसे देती हैं कि इतने सारे अलग अलग विचार हैं, वेद, उपनिषद, बौद्ध धर्म, योग, इन्हें एक साथ कैसे समझें?
बहुत अच्छा सवाल है। हैमिल्टन का जवाब है, इन्हें अलग अलग बिखरी हुई पहेलियों की तरह मत देखिए।
तो फिर कैसे देखें?
उन्हें एक ही मूल समस्या के अलग अलग समाधानों के रूप में देखिए।
और वो मूल समस्या है?
संसार का दुख।
बिल्कुल,
संसार में जो दुख है उसकी ये अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे से मुकाबला करते हुए समाधान है।
अच्छा, ये तो दिलचस्प नजरिया है।
हाँ, वो हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती हैं जो उन बुनियादी आइडिया से शुरू होती है जिन्हें लगभग सभी भारतीय विचारक मानते थे।
कौन से आइडियाज हैं वो?
पहला है संसार, मतलब जीवन का वो चक्र जिसमें अस्थिरता है, असंतोष है। दूसरा है कर्म, हमारे कामों का नतीजा जो इस चक्र को आगे बढ़ाता है।
ठीक है।
तीसरा है धर्म, वो व्यवस्था जो ब्रह्मांड को संभाले हुए है, एक तरह का कॉस्मिक लॉ।
और चौथा
है मोक्ष या निर्वाण, इस चक्र से आजादी जो परम लक्ष्य है।
तो हैमिल्टन कहती हैं कि इस फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है।
हाँ, वो कहती हैं कि इस फ्रेमवर्क को समझना ही पूरी कहानी को, पूरी परंपरा को उसकी अपनी शर्तों पर समझने की चाबी है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं हैमिल्टन इन विचारों को खोलती कैसे है।
जरूर।
सबसे पहले वो नींव भारतीय विश्व दृष्टि। हैमिल्टन कहती हैं कि शुरुआत किसी खास दर्शन से नहीं बल्कि उस बुनियादी समस्या से करनी चाहिए जिसे सब मानते थे।
और वो समस्या है संसार।
हाँ, संसार।
और जैसा मैंने पहले कहा, संसार सिर्फ पुनर्जन्म का आइडिया नहीं है, अक्सर लोग यही समझ लेते हैं।
हाँ, यही लगता है।
नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन की उस कंडीशन का नाम है जिसमें चीजें लगातार बदल रही हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है।
अस्थिरता।
हाँ, अस्थिरता, और इसीलिए एक तरह का असंतोषिक दुख हमेशा बना रहता है। ये जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और फिर से जन्म, इसका एक अंतहीन सिलसिला है।
ओह, तो इसी चक्र से सब निकलना चाहते थे?
बिल्कुल, यही वो चक्र था जिससे हर कोई आजाद होना चाहता था।
और ये चला कौन रहा था? आपने कर्म का जिक्र किया था।
हाँ, कर्म का सिद्धांत, और इसे किसी भगवान की सजा या इनाम की तरह नहीं देखना चाहिए।
तो फिर ये क्या है?
हैमिल्टन इसे एक प्राकृतिक अव्यक्तिक नियम की तरह समझाती हैं, जैसे ग्रेविटी का नियम होता है ना।
हाँ,
वैसे ही हमारे इरादे, हमारे काम, अच्छे या बुरे, वो अपने आप ऐसे नतीजे पैदा करते हैं जो हमारे भविष्य के अनुभवों को तय करते हैं। ये कॉस्मिक कॉज एंड इफेक्ट है।
अच्छा, फिर धर्म का क्या मतलब है यहाँ?
धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ रिलीजन या ड्यूटी नहीं है।
तो
ये वो बुनियादी व्यवस्था है, वो नैतिक और कॉस्मिक ऑर्डर है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है, उसे बैलेंस में रखता है। इस व्यवस्था के साथ हार्मनी में जीना जरूरी माना गया।
और इन सब का आखिरी लक्ष्य?
वो है मोक्ष या निर्वाण, इस संसार के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना, दुख का हमेशा के लिए अंत।
तो ये चार चीजें, संसार, कर्म, धर्म, मोक्ष, ये समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, हैमिल्टन कहती हैं कि ये बाकी सब कुछ समझने की बुनियाद है।
ठीक है, इस बुनियाद को समझने के बाद हैमिल्टन हमें शुरुआती समाधानों की तरफ ले जाती हैं। पहले वेद और उपनिषद आते हैं, है ना?
हाँ, शुरू में वेदों में यज्ञ और कर्म कांडों पर ज्यादा जोर था। क्यों? ताकि ब्रह्मांड की व्यवस्था जिसे ऋत कहते थे वो बनी रहे।
अच्छा।
लेकिन धीरे धीरे, खासकर उपनिषदों में, ध्यान बाहरी कर्मकांड से हटकर अंदर की खोज पर चला गया, इंट्रोस्पेक्शन पर।
तो उपनिषदों में क्या खोजा गया?
उपनिषद के ऋषियों ने बड़े गहरे सवाल पूछे, जैसे इस दुनिया के पीछे का असली सच क्या है, उसे उन्होंने ब्रह्म कहा। और मेरा यानी व्यक्ति का असली स्वरूप क्या है, उसे आत्मन कहा।
ब्रह्म और आत्मन।
हाँ, और उनका महान निष्कर्ष क्या था? वो था, आत्मन ही ब्रह्म है।
आत्मन ही ब्रह्म है, मतलब
हमारी अपनी चेतना, हमारा असली स्व, वो असल में उस परम चेतना, उस अल्टीमेट रियलिटी का ही हिस्सा है, उससे अलग नहीं है।
तत्त्वम असि, तुम वही हो।
ये वही है।
बिल्कुल,
ये वही महावाक्य है। और इस ज्ञान को पाना, इस सच्चाई को अनुभव करना ही मोक्ष का रास्ता माना गया। ये संसार की समस्या का पहला बड़ा सिस्टमैटिक जवाब था।
पर क्या सब लोग इस जवाब से सहमत थे? आपने कहा था नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है बुद्ध की।
अच्छा।
बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो उपनिषदों की परंपरा को एक तरह से सीधी चुनौती थी।
कैसे?
बुद्ध ने संसार और कर्म की बात तो मानी, वो बुनियादी ढांचा तो स्वीकार किया, लेकिन ये जो आत्मन वाला आइडिया था ना, कि एक स्थायी आत्मा है जो ब्रह्म है, उसे उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया।
तो फिर बुद्ध ने क्या कहा?
बुद्ध की शिक्षा का सार है चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स।
हाँ, सुना इनके बारे में।
पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है।
दूसरा,
इस दुख का कारण है, वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति या तृष्णा।
हम चीजों से चिपके रहते हैं इसलिए दुखी होते हैं।
हाँ बिल्कुल। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका निरोध संभव है, उसे निर्वाण कहा गया।
और चौथा?
चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है, एक प्रैक्टिकल रास्ता, आर्य अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ।
ठीक है, लेकिन वो आत्मन वाली बात, उसे क्यों खारिज किया?
यही बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी दार्शनिक आइडिया था, अनात्मन यानी नो सेल्फ या अनात्म।
मतलब कोई आत्मा नहीं है।
उनका कहना था कि कोई स्थायी न बदलने वाली आत्मा या मैं जैसी चीज है ही नहीं। यही विश्वास कि एक परमानेंट मैं हूं, मेरा है, यही सारी आसक्ति और दुख की जड़ है।
तो फिर हम क्या हैं?
उन्होंने व्यक्ति को पांच लगातार बदलते तत्वों के जोड़ के रूप में देखा। उन्हें स्कंद कहा, रूप, शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, पहचान, संस्कार, मानसिक आदतें, विज्ञान, चेतना, ये सब लगातार बदल रहे हैं।
अच्छा, तो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जिसे मैं कह सके।
बिल्कुल। तो बौद्ध नजरिए से निर्वाण किसी असली आत्मा को पाकर नहीं मिलता।
तो कैसे मिलता है?
वो मिलता है आत्मा के भ्रम से पैदा होने वाली इच्छाओं और आसक्ति को बुझाकर, जैसे दिया बुझ जाता है।
वाओ, ये तो उपनिषदों से बिल्कुल अलग रास्ता है।
हाँ बिल्कुल अलग। हैमिल्टन संक्षेप में जैन धर्म का भी जिक्र करती हैं, बस ये दिखाने के लिए कि उस समय और भी विचारधाराएं थीं जो इन्हीं मूल सवालों से जूझ रही थीं, कर्म, संसार, मुक्ति, भले ही उनके जवाब थोड़े अलग थे।
ठीक है, बुद्ध के बाद वैदिक परंपरा के अंदर भी तो विचारों का विकास जारी रहा होगा।
हाँ बिल्कुल। यहीं पर आते हैं वो छह क्लासिकल हिंदू दर्शन, जिन्हें दर्शन कहते हैं, मतलब देखने का नजरिया या सिस्टम।
ये वेदों को मानते थे?
हाँ, ये वेदों के अधिकार को तो मानते थे, लेकिन मोक्ष के लिए अलग अलग रास्ते सुझाते थे। हैमिल्टन उन्हें समझने में आसानी के लिए तीन जोड़ों में रखती हैं।
अच्छा, कौन कौन से जोड़े हैं ये?
पहला जोड़ा है न्याय वैशेषिक, इन्हें आप तर्क और विश्लेषण का दर्शन कह सकते हैं, लॉजिक और एटोमिज्म।
न्याय और वैशेषिक।
हाँ, न्याय ने इस पर जोर दिया कि सही ज्ञान कैसे पाया जाए, वैलिड नॉलेज, प्रमाण क्या है, हम कैसे जाने कि क्या सच है, ये एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस था।
ठीक है, और वैशेषिक?
वैशेषिक ने दुनिया के बुनियादी कणों का सिद्धांत दिया, जिसे परमाणुवाद कहते हैं। उन्होंने दुनिया की बनावट को समझने की कोशिश की।
और इनके हिसाब से मुक्ति कैसे मिलती थी?
इनका मानना था कि दुनिया की असलियत का सही ज्ञान हासिल करके, तर्क से अज्ञान को दूर करके ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अज्ञान ही हमें संसार से बांधता है।
समझ गई। दूसरा जोड़ा कौन सा है?
दूसरा जोड़ा है सांख्य योग। सांख्य मतलब गणना या विश्लेषण।
सांख्य योग, ये तो काफी सुना हुआ लगता है।
हाँ, सांख्य ने एक बड़ा दिलचस्प नक्शा दिया दुनिया का। उन्होंने कहा, दुनिया दो मूल चीजों से बनी है।
दो चीजें? कौन सी?
एक तरफ है शुद्ध चेतना, जिसे पुरुष कहा, और दूसरी तरफ है पदार्थ या प्रकृति, जिसे प्रकृति कहा। ये ड्यूअलिज्म है, द्वैतवाद।
पुरुष और प्रकृति।
हाँ, और दुख क्यों होता है? क्योंकि चेतना पुरुष गलती से खुद को पदार्थ यानी प्रकृति से आइडेंटिफाई कर लेती है, उससे जुड़ जाती है।
अच्छा, और योग क्या करता है फिर?
योग, जिसे पतंजलि ने व्यवस्थित किया, वो सांख्य के इस नक्शे को, इस फिलॉसफी को मानता है और फिर प्रैक्टिकल तरीका बताता है।
कैसा प्रैक्टिकल तरीका?
ध्यान और अनुशासन के जरिए कैसे चेतना पुरुष को प्रकृति से अलग किया जाए, उसे उसकी असली आजादी, जिसे कैवल्य कहते हैं, वो दिलाई जाए।
यहीं पर वो सूत्र आता है?
हाँ, यहीं पर वो मशहूर सूत्र आता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग मन की वृत्तियों यानी हलचलों को रोकना है।
कमाल है। और तीसरा जोड़ा?
तीसरा जोड़ा है मीमांसा वेदांत। ये वेदों की व्याख्या से जुड़े हैं।
मीमांसा और वेदांत?
मीमांसा का ज्यादा ध्यान वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर था, कि यज्ञ वगैरह सही ढंग से करने से ही धर्म बना रहता है और अच्छे फल मिलते हैं।
अच्छा, ये कर्मकांड पर ज्यादा फोकस थे।
हाँ, वहीं वेदांत ने उपनिषदों के ज्ञान वाले हिस्से पर, फिलोसफिकल टीचिंग्स पर फोकस किया।
आत्मन ब्रह्म वाली बात।
बिल्कुल, यहीं पर आत्मन ब्रह्म वाला विचार और गहराई से विकसित हुआ, खासकर आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में।
अद्वैत वेदांत क्या कहता है?
वो कहता है कि असल में सिर्फ एक ही चीज सत्य है, ब्रह्म। बाकी जो दुनिया हमें दिखती है वो माया है, एक तरह का भ्रम या रिलेटिव रियलिटी।
सब कुछ एक है।
हाँ, अल्टीमेटली सब एक है।
और एक बात जो आप पहले कह रही थी, हैमिल्टन जोर देती हैं कि इन सब में तर्क का बहुत महत्व था।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हैमिल्टन बार बार रेखांकित करती हैं कि इन सभी भारतीय दर्शनों में तर्क, बहस, शास्त्रार्थ और ज्ञान के सही स्रोतों, प्रमाण पर बहुत जोर था। सदियों तक इन अलग अलग स्कूलों के बीच जबरदस्त लॉजिकल डिबेट्स चलती रहीं, विचारों को परखा जाता था।
तो ये सोच कि भारतीय दर्शन सिर्फ रहस्यमय है या बस श्रद्धा पर आधारित है, वो बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत है। यहाँ लॉजिक और रैशनैलिटी का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल था।
ये जानना वाकई जरूरी है, क्योंकि आम धारणा कुछ और ही है।
हाँ, ये स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली बात है।
यहाँ गहरी छानबीन और तर्क की एक मजबूत परंपरा रही है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें, कुछ थीम्स, तो वो क्या होंगी?
हाँ, कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर आती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो हैमिल्टन कहती हैं, भारतीय दर्शन का लक्ष्य सिर्फ जानना नहीं है,
तो क्या है,
बल्कि उस ज्ञान से मुक्ति पाना है। ये सोटीरियोलॉजिकल है, बेहद प्रैक्टिकल है। इसका एक मकसद है दुख का अंत करना।
ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अनुभव की प्रधानता। जैसा हमने पहले कहा, ये दर्शन हवा में नहीं बने, इनकी शुरुआत हुई खुद के मन, चेतना और अनुभवों के गहरे विश्लेषण से। ये अंदर देखो वाला नजरिया है।
अच्छा, तीसरा पॉइंट।
तीसरा, सिद्धांत और अभ्यास का मेल। थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ चलते हैं। यहाँ सिर्फ बातें नहीं हैं, करने के तरीके भी हैं।
जैसे
सांख्य और योग।
बिल्कुल,
सांख्य का सिद्धांत योग के अभ्यास से जुड़ा है। बुद्ध के दार्शनिक विचार उनके बताए अष्टांगिक मार्ग से जुड़े हैं। ज्ञान को जीवन में उतारना जरूरी माना गया।
ठीक है।
और चौथा?
चौथा, चेतना का गजब का विश्लेषण। मन कैसे काम करता है, हमारी भावनाएं कैसे उठती हैं, धारणाएं कैसे बनती हैं, ध्यान क्या है, इन विषयों पर भारतीय दार्शनिकों ने हजारों साल पहले इतनी गहरी बातें कहीं
जो आज भी प्रासंगिक हैं।
हाँ, जो आज का मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी समझने की कोशिश कर रहा है।
बहुत एडवांस्ड एनालिसिस था वो।
पांचवा पॉइंट क्या होगा?
पांचवा, अनेकता में एकता। एक तरफ तो संसार, कर्म, मोक्ष का वो साझा ढांचा है जो सबको जोड़ता है, लेकिन उसके अंदर विचारों की जबरदस्त विविधता है। अलग अलग दर्शनों ने एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते दिखाए और आपस में बहस भी की। ये एक वाइब्रेंट बौद्धिक परंपरा थी।
और कोई मुख्य थीम?
हाँ, एक और कह सकते हैं, छठा, हर चीज का जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस। ज्यादातर भारतीय दर्शन मानते हैं कि कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है।
कैसे जुड़ा है?
चाहे वो कर्म के नियम से हो, या बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पात डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से, या वेदांत के ब्रह्म के विचार से, जहां सब कुछ एक ही चेतना है।
और इसका असर हमारी नैतिकता पर भी पड़ सकता है।
बिल्कुल, इसका असर हमारे नैतिक फैसलों पर, दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार पर, और यहां तक कि पर्यावरण के प्रति हमारी सोच पर भी पड़ सकता है।
वाकई ये विचार बहुत गहरे हैं, और कुछ सूत्र वाक्य या आइडियाज ऐसे हैं जो इन गहराइयों को जैसे निचोड़ कर रख देते हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ वाक्यांश या कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो पूरे दर्शन का सार बता देते हैं।
जैसे?
जैसे उपनिषदों का वो महावाक्य, तत्वमसी, तुम वही हो।
हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है असल में?
ये वो गहरा एहसास है, वो अद्वैत अंतर्दृष्टि है कि मैं, यानी ये छोटी सी इंडिविजुअल चेतना, असल में उस अनंत परम चेतना ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ।
ये तो मैं और तुम के सारे भेद मिटा देता है।
हाँ, ये हमारी पहचान की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। बहुत रेडिकल आइडिया है ये।
और बुद्ध का पहला आर्य सत्य, दुख।
हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक लगे कि जीवन में दुख है।
हाँ, लगता तो है।
लेकिन हैमिल्टन समझाती हैं कि ये पेसिमिज्म नहीं है, ये एक डायग्नोसिस है, जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, है ना?
हाँ।
जब तक हम मानेंगे नहीं कि समस्या है, तब तक उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे? ये दुख के कारणों की व्यवस्थित खोज का शुरुआती बिंदु है।
अच्छा, तो ये एक रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट है।
बिल्कुल। फिर बुद्ध का वो दूसरा क्रांतिकारी विचार, अनात्मन, कोई स्थायी मैं नहीं।
ये तो आत्मन के बिल्कुल उलट है।
हाँ, ये कहता है कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वो असल में लगातार बदलती हुई चीजों का एक फ्लो है, एक कॉम्बिनेशन है, कोई ठोस हमेशा रहने वाली चीज नहीं।
और इसी मैं से चिपकना दुख का कारण है।
हाँ, बुद्ध का यही तर्क था कि इसी स्थायी मैं के भ्रम से चिपके रहना ही सारी आसक्ति और दुख की जड़ है। तो मुक्ति इस भ्रम के टूटने में है, सच्चाई को देखने में।
ये तो हमारी पूरी पहचान की समझ को हिला देता है।
बिल्कुल। फिर पतंजलि का वो योग सूत्र, योगश्चित वृत्ति निरोधः।
योग मन की वृत्तियों का निरोध है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि योग सिर्फ शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना या आसन करना नहीं है।
तो क्या है?
इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है। ये मन को साधने, उसे शांत और एकाग्र करने का एक विज्ञान है, एक अनुशासन है, जिसका अंतिम लक्ष्य सत्य का अनुभव करना, कैवल्य पाना है।
अच्छा, और आपने नागार्जुन का भी जिक्र किया था, शून्यता।
हाँ, संक्षेप में नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिकों का शून्यता, एम्प्टीनेस का विचार, इसका मतलब नथिंगनेस या नियांटिज्म नहीं है।
तो क्या है
इसका मतलब? है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपने दम पर मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है, संबंधों में ही मौजूद है। चीजों का अपना कोई स्थायी स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, वे खाली हैं ऐसे स्वभाव से।
ये थोड़ा मुश्किल है समझना।
हाँ, ये गहरा कॉन्सेप्ट है, पर मूल बात है इंटरडिपेंडेंस की।
ये सारे विचार क्या ये सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए है, या इनका हमारी आज की जिंदगी में भी कोई मतलब है?
बहुत अच्छा सवाल, और हैमिल्टन जोर देती हैं कि इनका मतलब है। ये सिर्फ एकेडमिक चीजें नहीं है।
तो कैसे?
जैसे आत्मसमझ और अहंकार को लें।
हाँ, आत्मन का विचार कि सब एक है, हमें दूसरों के प्रति ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा एम्पैथेटिक महसूस करा सकता है, शायद हमारा ईगो थोड़ा कम हो।
और अनात्मन? और वहीं अनात्मन की कोई स्थायी मैं नहीं है का विचार हमें अपनी चिंताओं, अपनी असुरक्षाओं, अपने मैं मेरा वाले तनाव से थोड़ी दूरी बनाने में मदद कर सकता है।
कैसे?
जब ये समझ आता है कि ये मैं भी कोई फिक्स चीज नहीं, ये भी बदल रहा है, तो शायद हम उससे लेकर इतने परेशान न हो, इतने डिफेंसिव न हो। ये रोज के स्ट्रेस से डील करने में मददगार हो सकता है, है ना?
हाँ, ये बात तो है। और आजकल माइंडफुलनेस की कितनी बात होती है।
बिल्कुल, और योग और बौद्ध ध्यान की जो तकनीकें हैं वो तो हजारों साल पुरानी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसें हैं।
अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, उनसे चिपकना नहीं।
हाँ, बिना उनसे आइडेंटिफाई किए, बिना रिएक्ट किए उन्हें देखना सीखना। जैसे सांख्य में पुरुष को प्रकृति से अलग करके देखना, या बौद्ध धर्म में स्कंधों का विश्लेषण करना, ये तनाव, चिंता और गुस्से जैसी चीजों को कम करने का एक जबरदस्त तरीका है।
आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में शांति पाने का तरीका।
बिल्कुल, और नैतिकता की बात करें तो
हाँ, कर्म और धर्म।
कर्म का सिद्धांत हमें अपनी जिम्मेदारी का गहरा एहसास कराता है। ये भाग्यवाद नहीं है कि किस्मत में यही लिखा था।
तो क्या है?
ये समझना है कि हमारे आज के एक्शन ही हमारा कल बना रहे हैं। हर पल, हर चुनाव मायने रखता है।
और धर्म?
धर्म को हम अपना सही रास्ता, अपनी सच्ची भूमिका, अपनी इंटेग्रिटी खोजने के रूप में देख सकते हैं। एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सार्थक हो, ऑथेंटिक हो।
और अंत में दुख को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है?
बुद्ध का वो पहला सत्य याद है, दुख है।
हाँ,
इसे स्वीकार करने से ही एक तरह की राहत मिल सकती है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हम उन्हें कोई पर्सनल फेलियर या अनोखी चीज न समझें,
बल्कि ये समझें कि ये जीवन का हिस्सा है।
हाँ, कठिनाई जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम मेरे साथ ही क्यों पूछने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते,
बल्कि क्या पूछते हैं?
बल्कि ये पूछते हैं, ठीक है, ये स्थिति है, इसका कारण क्या हो सकता है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। ये हमें ज्यादा रेजिलियंट, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाता है।
हाँ, ये जिंदगी की हकीकत को स्वीकार करना सिखाता है, बिना घबराए।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख या हैरानी की बात रही वो ये थी कि भारतीय दर्शन कितना ज्यादा तर्कसंगत और सिस्टमैटिक है। इसने मेरी वो धारणा तोड़ी कि ये सिर्फ आस्था या कोई रहस्यमय चीज है। यहाँ तो बाकायदा लॉजिक है, डिबेट है, विश्लेषण है।
सही कहा।
और साथ ही इसकी व्यवहारिकता कि ये हजारों साल पुराने विचार आज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कितने काम आ सकते हैं।
बिल्कुल, और मेरे लिए शायद वो संसार वाला जो फ्रेमवर्क है वो बहुत प्रभावशाली था।
कैसे?
कि कैसे एक बुनियादी मानवीय समस्या, दुख का चक्र, इतने अलग अलग विविध विचारों को एक साथ जोड़ देती है।
ये दिखाता है कि सब एक ही गहरी चिंता का हल ढूंढ रहे थे, अपने अपने तरीके से।
हाँ, ये बात तो है। और हाँ, मन और चेतना के बारे में जो गहरी मनोवैज्ञानिक समझ इन दर्शनों में मिलती है, वो भी कमाल की है, सच में।
तो हैमिल्टन का मुख्य संदेश क्या है अंत में?
हैमिल्टन का मुख्य संदेश यही है मेरे ख्याल से कि भारतीय दर्शन सिर्फ सिद्धांतों का खेल या बौद्धिक कसरत नहीं है। ये दुख से मुक्ति पाने की एक गंभीर, एक व्यावहारिक और अनुभव पर आधारित खोज है।
और ये आज भी उतनी ही मायने रखती है।
हाँ, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही मायने रखती है। ये हमें बदलने का, हमें आजाद करने का एक तरह का न्योता है।
बहुत खूब, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।